بعد الذين استهزأوا. أعوذ
Recording in
بالله من
progress.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب پڑھیں نا بھائی درود شریف، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صلو علیہ وسلم تسلیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا واقعہ چل رہا تھا، سب کو پتا ہے غزوہ بدر کا واقعہ چل رہا تھا، جنگ بدر، غزوہ بدر، یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑی. تو غزوہ بدر میں ہم نے بہت ساری باتیں کر لیں، تو امید ہے کہ آج ہم کمپلیٹ کر لیں. جی اچھا، تو غزوہ بدر کے اندر ہم کیا کر رہے تھے، انہوں نے سوال پوچھنے سے پہلے جواب دے دیا کہ سوال اگر ہم پوچھتے کہ آخری واقعہ غزوہ بدر میں کیا تھا، تو وہ تھا کہ جب صحابی جو ہے وہ ایک دوسرے کو صحابہ مبارکباد دے رہے تھے. تو یعنی مبارکباد کہاں پہ، ایک تو راستے میں مبارکباد ایک صاحب نے آگے دی تھی نا، تو دوسرے نے جواب دیا تھا وہ تو بڑیاں تھیں، ان کو تو ہم نے جو ہے نا بندے بھی اونٹوں کی طرح ذبح کر دیا، کون سی مبارکباد دے رہے ہو ہمیں اس کے اوپر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے فرمایا کہ وہی تو اصل تھے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، تو وہ بندی بھی اونٹیاں اونٹنیاں نہیں تھیں وہ. جی ہاں جی بالکل صحیح، یہ بالکل آخری بات تھی کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے کے اوپر قیدیوں کے لیے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان کے بدلے ہم فدیہ لے لیں گے، رینسم منی لے لیں گے، اور جو جو اپنا رینسم دیتا جائے گا اس کو ہم چھوڑتے چلے جائیں گے. تو رینسم میں جو اماؤنٹ تھی وہ کتنی ڈیسائیڈ ہوئی تھی، کسی کو یاد ہے؟ تو زیادہ سے زیادہ کتنی تھی اماؤنٹ؟ 4,000 درہم. اور کم سے کم کتنی تھی؟ 1,000. 4,000 سے لے کے 1,000 تک کی اماؤنٹس ڈیسائیڈ ہوئی تھیں. اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا، واقعی وہ غریب تھے، واقعی غریب تھے، نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ غریب ہیں، تو ان کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مدینہ منورہ کے تم بچوں کو یا مدینہ منورہ کے لوگوں کو پڑھا دو جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میرے دل میں آ رہی ہے آپ لوگوں سے کرنا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم بات ہو رہی ہے نا آج کل، جمعے کے دن بھی بڑی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں، تو نبی علیہ السلام کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، اس سے زیادہ اچھا تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہو ہی نہیں سکتا نا. کیونکہ اللہ نے بنایا ہمیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ امریکہ کو زیادہ پتا ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یورپ کو زیادہ پتا ہے یا اللہ کو زیادہ پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے نا کہ ہمیں کیا پڑھنا اور کیسے پڑھنا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام کی ایک ایک چیز کے اوپر ہم نوٹ کریں کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے کیا. تو ہم دیکھیں اس بات کے اوپر نوٹ کرتے ہیں نا کہ پڑھنا لکھنا سکھایا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے نا ایجوکیشن کے اندر، وہ ہوتا ہے کہ آپ کو لینگویج پڑھنی آ جائے. ٹھیک ہے نا، اور پڑھنے کے بعد پھر دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھنا اچھی طریقے سے آ جائے. لکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کاپی کرنا، ادھر سے الف لکھ دیا، با لکھ دیا، تا لکھ دیا، یا آپ نے جو ہے وہ الفاظ جو ہے وہ کاپی کر دیے، نہیں. لکھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اس سوچ کو جو ہے وہ آپ بیان کر سکیں، زبان سے بیان کر سکیں. ٹھیک ہے، لینگویج کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ آپ لکھی ہوئی چیز کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں. ٹھیک ہے نا، کہ عربی میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس چیز کا، انگریزی میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ہے اس چیز کا. تو ریڈنگ ایکچولی، یہ ریڈنگ انکلوڈز کمپریہنشن. کمپریہنشن کا مطلب انڈرسٹینڈنگ، سمجھ. ٹھیک ہے، تو خالی ریڈنگ نہیں کہ طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں، نہیں، کمپریہنشن ایکچولی، دس از انکلوڈیڈ ان ریڈنگ. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے اسپیکنگ، کہ آپ نے جو سمجھا ہے یا آپ کے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ آپ کسی لینگویج میں ایکسپریس کریں گے، ایسے تو نہیں ایکسپریس کریں گے نا، گونگا آدمی ایکسپریس کرتا ہے، آپ کو کوئی لینگویج آتی ہوگی تو آپ ایکسپریس کریں گے نا، اردو میں ہو یا انگلش میں ہو یا فارسی میں ہو یا عربی میں ہو. ٹھیک ہے، تو ابلیٹی ٹو آرٹیکولیٹ اس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر. ٹھیک ہے، بیان کرنا. اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھی تحریر بھی لکھ سکیں. ٹھیک ہے، ہر بندہ جو بول سکتا ہے نا وہ لکھ نہیں سکتا اچھی تحریر. ٹھیک ठीक है ना, लिखना एक अलग एबिलिटी, हम समझते हैं बोलना आता है तो लिखना भी आता होगा, नहीं, लिखना एक अलग आर्ट है, एक अलग स्किल है। तो लैंग्वेज के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं, ये तीन चीजें जो है ना, ये है असल एजुकेशन, ये है एजुकेशन की बुनियाद। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो है वो सोलर सिस्टम के बारे में और न जाने क्या दुनिया जहां की चीजें पढ़ ली आपने, ठीक है ना, लैंग्वेज नहीं आई आपको, ना आपको अंग्रेजी अच्छी समझ में आती है, ना आपको अरबी समझ में आती है, ना आपको उर्दू समझ में आती है, ना आप अरबी में बात कर सकते हैं, ना उर्दू में अच्छी बात कर सकते हैं, ना अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, ना आप कुछ लिख सकते हैं, आपने वक्त जाया किया है इसके लिए, ठीक है ना। एजुकेशन तो लैंग्वेज से शुरू होती है और लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत वाकई करनी चाहिए, जितनी मेहनत हम मैथ्स के ऊपर और साइंस के ऊपर करते हैं ना, उतनी मेहनत एक्चुअली में एजुकेट हमें लैंग्वेज के ऊपर करनी चाहिए, ठीक है ना। जब लैंग्वेज आपकी पक्की हो गई ना, उसके बाद फिर आपके लिए डोर्स खुल गए, ठीक है, फिर आप साइंस भी अंग्रेजी में, अरबी में, जिसमें भी आप पढ़ें साइंस पढ़ें, ठीक है ना, आप जो है वो सोशियोलॉजी पढ़ें, आप दूसरे लैंग्वेज, दूसरे फील्ड्स पढ़ें। मैथमेटिक्स एक चीज है जो कि लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होती, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको एक मैथमेटिक्स समझने वाला टीचर चाहिए होता है, उससे आप जो है मैथमेटिक्स सीख लीजिएगा, ठीक है, फिजिक्स वगैरह भी उसके अंदर ही आ जाती है। जी
आपसे जो बहुत
चलें, इसका जवाब आप ही दें।
माशाल्लाह
माशाल्लाह, तो क्या सिलेबस था? काफिर दिन पढ़ा रहे थे। नहीं, पहला सवाल तो बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, सिलेबस जो है नबी अलैहिस्सलाम का सिलेक्टेड था, ठीक है ना, लेकिन वो तीन सिलेबस को थोड़ी काफिरों ने पढ़ा रहे थे, वो क्या सिलेबस था? तो इसको क्या कहते हैं, अभी इतनी देर से मैं क्या बोल रहा था, नहीं लैंग्वेज, देवर टीचिंग देम लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है ना, ये एक न्यूट्रल चीज है, इसके अंदर कुफर, शिर्क, इस्लाम ये सब नहीं आता। लैंग्वेज तो भाई काफिर भी अरबी बोलता है, अबू जहल अरबी नहीं बोलता था, अबू लहब अरबी, बड़ा जबरदस्त अरबी आती थी अबू लहब को, उमैया को और वलीद को और पलीद को और सबको अरबी बड़ी जबरदस्त आती थी। तो भाई वो काफिर थे, मुशरिक थे, लेकिन अरबी तो उनको भी बड़ी जबरदस्त आती थी ना, नबी अलैहिस्सलाम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, इनको भी अरबी जबरदस्त आती थी। तो अरबी लैंग्वेज है, इट्स अ न्यूट्रल टूल, ठीक है, तो वो मुसलमान मुसलमान बच्चों को न्यूट्रल टूल यानी लैंग्वेज सिखा रहे थे। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है कि एज लॉन्ग एज के कंटेंट कोई हराम नहीं है, आप लैंग्वेज सीखें, काफिर से भी सीख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ना हो कि पता चला उन्होंने गंदी कहानी पढ़ा पढ़ा करके ना आपको अंग्रेजी सिखानी शुरू कर दी, और कहानी की गंद गंद, जैसे कल बातें हो रही थी, कुछ बच्चे भी शायद सुन रहे थे, गंदी गंदी कहानियां है ना अंग्रेजी की किताब के अंदर मौजूद होती हैं, और वो झूठ बोल रहे होते हैं कि हम तो खाली लैंग्वेज सिखा रहे हैं। नहीं, वो खाली लैंग्वेज नहीं सिखा रहे, वो गंदगी भी सिखा रहे हैं साथ साथ, ठीक है, ऐसे नहीं लैंग्वेज सीखनी है हमने, लेकिन लैंग्वेज हम किसी से भी सीख सकते हैं अदरवाइज। अच्छा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोगों को समझ में आ जाए तो आप लोगों के लिए फिर स्कूलिंग और एजुकेशन और ये सारी चीजें जो है ना वाकई बेनिफिशियल इंशाल्लाह बन जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये फिदिये की जो बात हो गई, तो आपको बता दिया था ना कि अल्लाह ताला ने सहाबा को इख्तियार दे दिया था कि भाई तुम या तो उनको मार दो, इन काफिर और कैदियों को, या तो अगर नहीं मारते ना, तो उनसे अगर फितिया लेते हो ना, तो ठीक है ले लो फितिया, लेकिन इसके बदले में नेक्स्ट जो वॉर होगी तो उसके अंदर तुम्हारे भी इतने बंदे मारे जाएंगे। तो सहाबा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ हम शहादत के लिए तैयार हैं, ठीक है ना, और इन लोगों को हम इसलिए नहीं मारेंगे कि एक तो ये कि इनसे हम फिदिया लेंगे तो मुसलमानों का जनरली फायदा होगा, दूसरी ये कि उम्मीद है कि ये लोग मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इसकी बड़ी मजे मजे की आगे कुछ स्टोरीज हैं कि उन लोगों के साथ फिर क्या क्या हुआ, ठीक है, वो फिर हम आगे पढ़ते हैं कि कुछ जो लोग थे ना, तो वाकई वो इतने गरीब थे कि नबी अलैहिस्सलाम ने ना उनको बगैर फिदिये के रिहा कर दिया, जैसे अमर बिन अब्दुल्ला बिन उस्मान एक बंदा था, उसको बगैर फिदिये के, मुतल्लब मुतल्लब बिन हंतब, सैफी इब्ने रबी अबी रिफा, ये बड़े गरीब लोग थे, तो इनको नबी अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल बगैर फिदिये के, इनके बारे में ये भी नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, नहीं, इन्होंने बच्चों को भी शायद नहीं पढ़ाया, बस कुछ भी नहीं था, इनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, ऐसे ही रिहा कर दिया, यानी नबी अलैहिस्सलाम ने इतना मर्सीफुल मामला ऐसे लोगों के साथ किया। फिर उसके बाद एक और थी बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक्चुअली, हाँ, कि पीछे हमने जो पढ़ा था कि नबी अलैहिस्सलाम ने दो मैसेंजर्स भेजे थे मदीना मुनव्वरा, एक जो है वो नॉर्दर्न साइड की तरफ, एक सदर्न साइड की तरफ, ठीक है। तो यहूदियों ने तो झूठ पर फैला दिया था कि तो उनको तो शिकस्त हो गई और नाउज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, और ये देखो ये जो आ रहा है ना ये उन्हीं की तो ऊँटनी के ऊपर बैठा है, झूठ बोल रहे थे, पक्का झूठ बोल रहे थे। पता चल गया थोड़ी देर में कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम को तो फतह हुई है। तो मदीना मुनव्वरा में फिर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद होनी शुरू हो गई, बहुत खुशी हुई। दूसरी साइड मक्का मुकरमा में क्या हुआ, ठीक है। मक्का मुकरमा में ये हुआ कि एक बंदा था जिसका नाम था हैसमान खुजाई, ठीक है। ये हैसमान खुजाई जो है ना ये सबसे पहले दौड़ता हुआ भागता हुआ ना ये किसी तरीके से मक्का मुकरमा सबसे पहले पहुंच गया, और उसने जा करके ना लोगों से कहना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, जैसे कहना शुरू कर दिया, कुतला मारा गया, उतबा कुतला, शैबा बिन रबिया कुतला, अबुल हकम बिन हिशाम कुतला, उमैया बिन खलफ कुतला, जमर बिन अस्वद, उमैया नबिया मंबा पिसराने हुज्जाज फला फला, सब मारे गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्या बोल रहे हो तुम, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद यू, क्या हो गया तुम्हें, ठीक है। तो वहां पर ना एक बंदा है इनका बड़ा सरदार कुरैश एक था, सफवान बिन उमैया, वो नहीं गया था बदर के अंदर, ठीक है, फॉर व्हाटएवर रीजन वो नहीं गया था। तो वो ना उस वक्त हतीम में बैठा हुआ, हतीम पता है ना मक्का वो काबतुल्ला के इस तरफ ऐसी जगह है, तो वो हतीम में बैठा हुआ था। तो उसने कहा कि ये तो क्रेजी हो गया है, ठीक है, तो अच्छा लगता है कि ये पागल हो गया है, तो तुम लोग ऐसा करो, लोगों से कहा उसने, तुम लोग ऐसा करो उससे पूछो कि सफवान बिन उमैया किधर है, ठीक है, अगर ये मुझे पहचान करके सही जवाब देगा ना कि तो फिर इसका मतलब है कि ये अपने सेंसेस में है, और अगर ये कहेगा सफान भी मारा गया तो मतलब ये वाकई पागल हो गया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ सफान बिन उमैया किधर है, तो उसने जवाब दिया सफान तो वो बैठा हुआ है हतीम में बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब ना इन लोगों को यरमुकल्ला यकीन आ गया कि ये बंदा जो है वो सही बोल रहा है, ठीक है। हाँ फिर उसने कहा कि मैंने अपनी आंखों से सफवान के बाप और भाई को कत्ल होते हुए देखा, ठीक है। तो उस वक्त ना एक और मजे का वाकया हुआ दिलचस्प, के हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला जो नबी अलैहिस्सलाम के कजन थे, चचा अब्बास के बेटे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है ना, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान बने। तो अब्बास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उस वक्त ना हमारे फैमिली में, यानी जो हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला की फैमिली थी उसमें इस्लाम दाखिल हो चुका था। क्या मतलब कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला गालिबन उस वक्त वो भी मुसलमान हो गए थे, और उनकी अम्मी जिनका नाम था अबुल फजल, सॉरी उम्मुल फजल, वो भी मुसलमान हो गई थी। अब्बास रजी अल्लाह तआला उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि वो तो गजवाए बदर में गए थे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत बड़ी करते थे, नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट भी करते थे, लेकिन जैसे अबू तालिब मुसलमान नहीं हुए थे, ठीक है ना, उसी तरह अब्बास रजी अल्लाह तआला भी मुसलमान उस वक्त हुए नहीं थे। तो हुआ ये कि इनका एक गुलाम था अबू रफा, ठीक है, अबू राफे, अब्बास सुल्तान का गुलाम अबू राफे, ये भी मुसलमान हो गया था, ठीक है। तो ये फरमाते हैं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कि हम भी जो है ना, क्योंकि हम तो मुसलमान हो गए थे, तो हम खबर के मुंतजर थे कि क्या हुआ बदर के अंदर ना। तो जैसे ही हैसमान खुजाई आया और उसने जो है ना कुरैश को खबर दी कि भाई ये कुरैश तो मारे गए सारे के सारे, हम लोग बहुत खुश हुए, बहुत उसको सुनकर के खुश हुए, लेकिन हमने लोगों को बताया हुआ था ही नहीं कि हम मुसलमान हो, हमने छुपाया हुआ था अपने इस्लाम को, अपने यानी उम्मुल फजल ने अपने शौहर से छुपाया हुआ था अपने इस्लाम को, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपने वालिद से अपने इस्लाम को छुपाया हुआ था, किसी को पता नहीं था कि मुसलमान हो गए। तो अच्छा हम लोग वहीं पे मौजूद थे ना, जमजम का एक छोटा सा उन्होंने जो कुआं था उसके ऊपर एक छोटा सा छप्पर डाला हुआ था, ठीक है। तो वहां पे मैं बैठा हुआ था और साथ साथ जो है ना, मेरी अच्छा उम्मे फजल इनकी इनकी बीवी, सॉरी इनकी वालदा नहीं, हाँ ये शायद मैंने कुछ, या ये टाइपिंग, अब उम्मे फजल हजरत अब्बास रजान की वाइफ का नाम है ना, नहीं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजान की वाइफ का नाम, नहीं
अब्बास,
अब्बास की वाइफ है ना, तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें, टाइपिंग मिस्टेक्स भी एक दो जगह पर हैं। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजान यहाँ पर मौजूद थे, तो उनकी वालिदा जो है ना उम्मुल फजल वो भी वहां पे मौजूद थी, ठीक है। तो इतने में ना फिर ये सारी शोर वोर सुन करके ना अबू लहब भी उधर ही आ गया, जो कि इनका इनका भी तो चचा ही था ना अबू लहब, वो भी इधर आ गया। तो इतने में ना लोगों ने देखा कि अबू सुफियान बिन हारिस, हारिस ये भी नबी अलैहिस्सलाम के चचा का नाम, अबू तालिब, अब्बास, हमजा, अबू लहब, हारिस, ये सब नबी अलैहिस्सलाम के चचा, ठीक है। तो इनका बेटा अबू सुफियान जो है ना वो भी आया बदर से वापस। ठीक है, तो अबू लहाब ने अबू सुफियान को बुला करके पूछा, ये अबू सुफियान बिन हारिस है, अबू सुफियान वो वाले नहीं जो कुरैश के सरदार थे, तो आके पूछा कि भाई अबू सुफियान क्या हुआ बदर में। तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम कोई खबर नहीं सिवाय ये कि हम एक कौम से मद्दे मुकाबिल हुए, यानी हमारा वहां पे जो लड़ाई है ना हुई ना वो एक अजीब गरीब किस्म की कौम से हुई, तो वो बस हम तो बस ऐसे हथियार चलाते थे लेकिन वो लोग जो थे ना वो जैसे चाहते थे हमें मारते थे। ठीक है, और वो हमें मारते भी थे, वो हमें जो कैद भी करते थे, और वो अजीब गरीब किस्म के घोड़ों के ऊपर सवार थे जो कि आसमान और जमीन के दरमियान उड़ रहे थे वो घोड़े। ठीक है ना, उबुलक किस्म के कोई चितकबरे टाइप के शायद वो घोड़े थे, स्पॉटेड स्पॉटीज स्पॉटेड किस्म के वो हॉर्सेस थे, उनके ऊपर वो सवार थे और जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक थे, यानी दे वर फ्लाइंग हॉर्सेस, और उनके ऊपर वो बैठे हुए थे वो लोग, वो हमें जैसे चाहते थे मारते थे, खुदा की कसम वो किसी चीज को बाकी नहीं छोड़ते थे और कोई इनके सामने ठहर नहीं सकता था। ठीक है, यानी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो ये किसने कहा, अबू सुफियान बिन हारिस ने ये खबर दी अबू लहाब को। अबू लहाब ने पूछा था ना भी क्या हुआ उधर, तो उसने ये सारी की सारी डिटेल बताई। तो ये जो है ना ये लोग भी सुन रहे थे, अबुल फजल और अबू राफे जो अब्बास रदान के गुलाम थे और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सब उधर मौजूद थे ना, तो अबू राफे जो है ना उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने जो है ना जोर से बोल दिया कि खुदा की कसम ये तो फरिश्ते थे। ठीक है, ये तो फरिश्ते थे। अब जब इन्होंने ये कहा कि ये तो फरिश्ते थे तो अबू लहब को तो पता लग गया कि इसका मतलब है कि ही इज नॉट विद अस एनी मोर, ये तो उनके साथ मिला हुआ है। ठीक है, एक लतीफा आपने सुना है कि वो एक जो है ना साहब वो शेर का शिकार करके आए। ठीक है, उन्होंने शेर मारा तो वो आकर के ना अपने दोस्त को बता रहे थे कि यार मैंने जो है ना एक शेर का शिकार किया। ठीक है, तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, है तुमने शेर का शिकार किया, ये बताओ कि शेर का रंग कैसा था। तो उसने कहा भाई शेर का रंग कैसा होता है, वैसा था। अच्छा ये बताओ शेर कितना बड़ा था, उसने कहा भाई शेर जो है वो इतना बड़ा था। अच्छा ये बताओ कि शेर जो है ना वो क्या कर रहा था उसे, उसने कहा भाई शेर जो है वो अपना कुछ काम कर रहा था, खा पी रहा था। फिर उसने दोबारा शेर के बारे में, तो उसने जवाब दिया वो यार तू मेरा दोस्त है कि शेर का दोस्त है, तुम्हें ज्यादा फिक्र जो है वो शेर की पड़ी हुई है कि शेर क्या था, शेर क्या कर रहा था, शेर क्या खा रहा था, शेर का रंग कैसा था। तुम मुझसे पूछो कि मैंने कैसे शेर को मारा, है ना, मेरी बहादुरी के बारे में कुछ बातें करो, मेरे मुझे प्रेस करो, मेरी तारीफ करो, तुम तो लगता है शेर के दोस्त हो। ठीक है ना, तो इस तरह बातों से पता चल जाता है कि बोलने वाला जो है ना वो किसका साथी है। तो अबू राफे ने जो बोला ना तो अबू लहाब को पता चल गया कि ये तो लगता है मुसलमान हो चुका है, ये तो उनका साथी बन चुका है। तो अबू लहाब ने जो है ना जोर से थप्पड़ मारा अबू राफे को। ठीक है, और फिर अबू राफे को उठाया और यूं करके जमीन के ऊपर पटक दिया। ठीक है, और फिर उसके ऊपर उनके ऊपर चढ़ गया। अबू राफे बेचारे कमजोर से गुलाम थे, अबू लहाब तो अबू राफे के ऊपर इतना गुस्सा है, जाहिर है गुस्से का तो मौका था, फ्रस्ट्रेटेड थे ना ये लोग शदीद किस्म के, तो अबू राफे के ऊपर चढ़ गया। अब वहां पर उम्मुल फजल भी मौजूद थी, उन्होंने देखा कि ये हमारा गुलाम है और ये अबू लहब जो है ना ये क्या कर रहा है इसके साथ। ठीक है, उन्होंने जो है ना एक डंडा उठाया, डंडा उठा के ना अबू लहब के सर के ऊपर मारा जोर से। ठीक है ना, और जोर से बोला कि भाई इसका मालिक अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु थे, वो तो बदर में गए हुए थे, तो मालिक अगर तो इधर मौजूद नहीं है तो तुम समझते हो यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट विद आवर स्लेव, राइट, हमारा ये खादिम है, तुम समझते हो तुम जो चाहो कर सकते हो उसके साथ, है ना। तो जब उसको डंडा पड़ा ना तो वो है ना वो फिर साइड पे हो गया, उसको अच्छी खासी चोट भी लगी इसकी वजह से। ठीक है, और ये लोग जो थे ना इन्हों की एक खास बात ही, पहले भी हम क्लास में बात कर चुके हैं कि ये लोग औरतों पे हाथ नहीं उठाते। ठीक है, और औरतों की रिस्पेक्ट जो थी ना इस मुआशरे के अंदर भी, यानी हर औरत की रिस्पेक्ट नहीं होती थी, कुछ ऐसी औरतें भी होती थी जो कि इंतहाई गंदे काम करती थी, वो तो बिल्कुल उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी ना मुआशरे के अंदर, लेकिन जो रिस्पेक्टेबल घरानों वाली खवातीन थी ना जो घरों में रहती थी और बाकायदा यानी घर की इज्जत होती थी, चाहे माँ हो बेटी हो, राइट, उनकी ये लोग बड़ी इज्जत करते। हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम को जब कत्ल करने के लिए आए थे ना, जब हिजरत हो रही थी याद है, तो ये लोग घर में दाखिल नहीं हुए थे क्योंकि ये इनकी ट्रेडिशन के खिलाफ था कि किसी खानदान वाले के घर के अंदर आप ऐसे दाखिल हो जाए। ये लोग बाहर खड़े होकर के वेट कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम का, निकलेंगे तो हम मारेंगे। ठीक है, इतनी रिस्पेक्ट उन लोगों की होती थी। आज तो हम लोग जो है ना वो इनसे भी कम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी औरतों की, तो बहुत बुरी बात है। खैर, तो ये जो उसको चोट लगी, तो इस चोट की वजह से या किसी और वजह से सात दिन के बाद, इस वाक्य के एग्जैक्टली सात दिन बाद अबू लहब को जो है ना एक प्लेग वाली जो है ना वो गिल्टी, एक उसको ट्यूमर हुआ, प्लेग का था यानी कैंसरस किस्म का कोई ट्यूमर था जो कि यानी फैलने वाली कोई चीज थी, और फिर वो उस तरीके से मरा जिसके बारे में आपको बता चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। इस कंडीशन के पीछे क्या हिकमत थी? सॉरी, आपका सवाल अभी देखा है तो आप जरा इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं, आप कौन सी वाली कंडीशन के बारे में बात करी थी, इस कंडीशन के पीछे क्या हिकमत थी, आप बता दीजिएगा तो फिर देखेंगे, या हो सकता है बताएंगे पिछली क्लास का सवाल तो नहीं देखेंगे। तो ये वाला वाकया हुआ, फिर उसके बाद लोग जो है डिस्पर्स हो गए और इन कुरैश के लोगों ने ना फिर रोना धोना मचाया, खूब इसको कहते हैं नौहा करना। ये नौहा करना भी उनके ट्रेडिशन का हिस्सा था, खूब जैसे आपने देखा विषयाओं का जो बरसिया सब होता है मातम वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं हाय ऐसे करके, और कोई अपने आप को काट रहे होते हैं, कोई जला रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहे होते हैं, उसको नौहा करना और जारी करना कहते हैं। तो इन लोगों ने ना एक महीने तक बाकायदा यानी जिस तरह होता है ना, ये मरने के बाद 3 दिन के बाद सोयम होगा, तो 40 दिन के बाद फलाना चेहलम होगा, तो फिर ये होगा तो ये होगा, जिस तरह कुछ लोगों ने ये ट्रेडिशन बनाए हुए हैं उसी तरह उन लोगों ने एक ट्रेडिशन बनाया हुआ था, एक हमने बाकायदा बैठ करके हा 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 रोना है जोर जोर से। अब किसी का दिल नहीं चाह रहा उसने भी रोना है, जैसे हमारे यहाँ कुरान खानी का एक बनाया हुआ है, ठीक है, हालांकि ऐसा है नहीं सुन्नत के अंदर, भाई आप अपनी मर्जी तो कुरान मजीद पढ़ें और ईसाले सवाब करें, ये क्या आप देख बगा रहे हैं और सबको जमा करके पढ़ो कुरान मजीद, नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारे कहाँ से आ गया भाई कुरान मजीद। तो ये एक इस किस्म की कस्टम्स बना दिए, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने रोने का कस्टम बनाया, बैठो और बैठ करके रोना शुरू कर दो, ठीक है। तो एक महीने तक ना ये इसी तरीके से रोना धोना उन्होंने मचाया, और फिर उसके बाद उनको ख्याल आया कि यार ये तो हम गलत कर रहे हैं, हमें तो ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो मुसलमानों को खबर पहुंचेगी तो वो तो समझेंगे कि हम लोग जो है ना तो बड़ा लूजर्स हैं और हम तो डिफीटेड हैं, और वो लोग बड़े खुश होंगे। तब उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा चलो बस बहुत हो गया रोना धोना, अब चुप कर जाओ सारे, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या करी कि मदीना मुनव्वरा से मैसेज तो आ चुका था कि फिदिया दो भाई अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए, तो इन्होंने ना अपने लोगों से कहा कि कोई फिदिया नहीं देगा, ठीक है। अगर फिदिया दिया ना किसी ने तो उससे क्या होगा कि मुसलमान एक तो समझेंगे कि हाँ ये लोग बड़े कमजोर हैं, और वो ना फिर अपनी प्राइस बढ़ा देंगे, है ना, जिससे 4,000 मांग रहे थे वो कहेंगे अच्छा ये देने के लिए तैयार है तो चलो अब इंसान 6,000 मांगते हैं, ठीक है, जैसे डाकू लोग कभी करते हैं कि अच्छा तैयार हो तो फिर हम और फिदिया और हम रैंसम मांगने शुरू। तो उन्होंने कहा जी कोई फिदिया नहीं देगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इनके यहाँ कोई ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम तो था नहीं, कोई इनका अमीर कोई सुल्तान ऐसा तो कुछ था नहीं, तो लोगों की मर्जी थी मानो ना मानो। तो क्या हुआ कि एक बंदे ने जिसका नाम था मुकलब बिन अबी वदा, तो इसने ना फिर 4,000 दिरहम लिए और कुरैश से छुप करके ये रात को मदीना मुनव्वरा चला गया, वहां जाकर के अपने बाप अबू वदा का जो है ना फिदिया अदा किया और बाप को लेकर के मकम करम आ गया। जब दूसरे लोगों ने देखा कि यार ये तो जाके अपने बाप को छुड़ा के ले आया, तो उन्होंने कहा भी हम भी छुड़ा करके ले आते हैं, ठीक है। तो सब ने फिर इस तरह से फिदिया विदिया देना शुरू कर दिया। सुहेल बिन अमर एक और आदमी थे जो कि बाद में जाकर के मुसलमान हो गए थे, तो उनका भी इसी तरीके से ये भी छूट करके वापस आ गए। अबू सुफियान बिन हर्ब जो कि असल अबू सुफियान कुरैश के सरदार, तो उनका एक बेटा अमर भी था कैदियों के अंदर, तो उसका भी इसी तरह का एक मामला हुआ कि अबू सुफियान ने ना एक सहाबी साद बिन नोमान मदीना मुनव्वरा से उमरा करने के लिए आ गए मकाम करम, ठीक है। तो वो आई डोंट नो पूछ कर आए थे या ऐसी पूछ बगैर पूछ आ गए, बहरहाल वो उमरा करने के लिए आ गए। इन लोगों ने देखा, उन्होंने को पकड़ लिया, साद बिन नोमान को पकड़ लिया, और फिर उसके बाद मदीना मुनव्वरा ये मैसेज भेजा कि भाई अगर तुम अबू सुफियान के बेटे को छोड़ोगे तो फिर हम साद को छोड़ेंगे, ठीक है। तो उन्होंने मुसलमानों ने फिर उसके बेटे को छोड़ा, इन लोगों ने फिर उसके बदले में साद को छोड़ दिया। किसी ने कुछ पूछना था शायद, कोई सवाल था किसी के पास? जी जी, जिनके कोई रिलेटिव नहीं थे, इन तमाम लोगों में से कोई ऐसा कैदी का जिक्र नहीं है कि जिसका कि कोई रिलेटिव नहीं था, ठीक है, सारे ही रिलेटिव्स वाले थे, बिकॉज ये ट्राइब के ही लोग हैं, तो ट्राइब के अंदर तो रिलेशनशिप्स होती हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग कभी कभार होते थे जो बाहर से आके सेटल हो गए, उनको कोई ट्राइबल रिलेशनशिप्स नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बंदा इनमें शामिल नहीं था कैदियों में। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कंडीशन प्रिजनर्स के बारे में, अच्छा, इनका सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने जो ये कंडीशन लगाई थी कि तुम लोग जो है ना इन मुशरिकीन को अच्छे तरीके से मारो, ठीक है, तो उस कंडीशन की जो वजह उलमाए कराम ने लिखी है ना, वो वजह यही लिखी है कि ये जो वक्त था ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये रहम करने वाला वक्त नहीं था, ठीक है, ये वक्त था क्योंकि अब जो है वो एक्चुअल फाइट अल्लाह ताला ने करवाई थी यहाँ पे, है ना। 13 साल से क्या हो रहा था, नबी अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों को खैर की तरफ बुला रहे थे, प्यार से बुला रहे थे, मोहब्बत से बुला रहे थे, अकल से समझा रहे थे, और उनकी पिटाइयां भी बर्दाश्त कर रहे थे, जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, वापस जवाब देने की भी इजाजत नहीं थी, मारने की भी इजाजत नहीं थी, हालांकि इन लोगों के पास पावर होती थी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मना था, नहीं, इन लोगों को बिल्कुल आपने जवाब नहीं देना इनकी बुराइयों का, इनकी तकलीफों का। 13 साल तक बहुत ज्यादा तशद्दुद बर्दाश्त किया था मुसलमानों ने, और अब वो वक्त 13 साल बल्कि 14 साल के बाद अब वो वक्त आया था कि अल्लाह ताला ने फिर फाइटिंग, इनके साथ लड़ना है, ठीक है। तो ये एक वक्त अल्लाह ताला की तरफ से था कि भाई अब इस टाइम पे जो है ना, अभी तुम रैम को रखो साइड पे, ये दिस इज वॉर, सही है। तो अल्लाह ताला की जो डिजायर थी वो ये थी कि बस अच्छी तरीके से इन काफिरों को मारो कि मुसलमान इस्लाम का जो है ना वो एक परमानेंट एक बैठ जाए, रोब और दबदबा बैठ जाए, ठीक है, और इस वक्त रहम की बात ना करो, ठीक है। लेकिन ये भी बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि अल्लाह ताला की प्रेफरेंस तो ये थी, चाहत तो ये थी, लेकिन साथ साथ अल्लाह ताला ने मुसलमानों को और नबी अलैहिस्सलाम को इजाजत भी दी हुई थी कि अगर आप फिदिया लेना चाहें तो ठीक है ले लें, ठीक है ना। आई एम नॉट मोस्ट प्लीज विद इट, लेकिन परमिसिबल है। जैसे आपको मिसाल दी थी ना कि अम्मा जो है वो कभी कहते हैं चलो जाओ तुम कर लो ये वाला काम, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वाला काम, ठीक है मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आप वो काम कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो आपकी पिटाई तो नहीं होती ना, क्योंकि अम्मा ही ने इजाजत दी थी, पिटाई नहीं होगी, लेकिन अम्मा की नाराजगी तो बहरहाल पता चल जाती है ना। उसी तरह से इस मौके पर भी हुआ कि अल्लाह ताला ने अपनी नाराजगी तो दिखा दी, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को पता चल गया कि अल्लाह ताला इज नॉट द हैप्पीएस्ट विद दिस डिसीशन। एक अजाब भी अल्लाह ताला ने भेजा और फिर उस अजाब को वापस भी उठा लिया, ठीक है ना। वो अजाब अबू बकर सिद्दीक और नबी अलैहिस्सलाम ने देखा था, ठीक है, इसका वाकया पता है। नबी अलैहिस्सलाम और अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो बैठे हुए थे, ठीक है, और रो रहे थे, ठीक है, यानी ये अगले दिन की बात, जब ये फिदिया विदिया की सारी डिस्कशन हो गई ना, तो अब अगले दिन सुबह के वक्त ये दोनों हजरात बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। उमर फारूक रहता जो है वो, उनका तो यही था कि सुबह उठते थे आकर के नबी अलैहिस्सलाम को देखा करते थे ये लोग ना, तो उमर फारूक खतान आए, उन्होंने देखा कि भाई दोनों रो रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने बड़ा मजे की बात कही, उन्होंने कहा कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, मुझे वजह बताएं कि आप लोग क्यों रो रहे हैं, अगर मुझे आपके रोने की वजह समझ में आ गई ना तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा, ठीक है, और अगर मुझे समझ में नहीं आई कि आप क्यों रो रहे हैं तो मैं इस वजह से रोऊंगा क्योंकि आप लोग रो रहे हैं। अजी भाई, कैसे मोहब्बत करने वाले थे और कैसे इत्तेबा करने वाले थे, है ना। अगर समझ में आ गई तो समझ में आने की वजह से रोऊंगा, और अगर नहीं समझ में आई आपको तो मुझे कॉपी करना है भाई, मैं तो फिर भी रोऊंगा, राइट। अजीब लोग थे, है ना। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि उमर तुमने जो कहा था ना अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद था कि इन लोगों को मत छोड़ो, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग ने देखा कि वो जो दरख्त है ना सामने, अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ और उस दरख्त तक पहुंच गया था, यानी हम देख रहे थे अल्लाह का अजाब आ रहा था, और जब अल्लाह का अजाब आता है नबी को नजर आ रहा है तो तसव्वुर करें नबी के क्या हालत होती होगी, उसमें क्या हालत हुई होगी नबी अलैहिस्सलाम की और बल्कि सिद्दीक की। तो एक तो अल्लाह की नाराजगी का एहसास होना, यही बहुत बड़ी बात है नबी के लिए, और फिर उसके बाद अजाब को देख लेना कितनी बड़ी बात थी। लेकिन चूंकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी हुई थी तो इस वजह से ना, इस सिर्फ अल्लाह ताला ने बस रिकॉर्ड करने के लिए, अभी मैं नाजी नहीं हूं, ठीक है, तो फिर अल्लाह ताला ने उसको वापस भी बुला लिया, तो अजाब हुआ नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उमर अगर वो अजाब आ जाता ना नीचे हमारे ऊपर तो कोई नहीं बचता सिवाय तुम्हारे और सिवाय साद बिन मोआज़ के, क्योंकि इन्हीं दोनों ने वो वाली बात करी थी जो अल्लाह ताला को ज्यादा पसंद, और बाकी सब ने कहा था फिदिया ले लेते हैं फिदिया। एक और साहबी ने भी एक और डिफरेंट बात करी थी, लेकिन इन दोनों का जिक्र है। तो तुम दोनों के अलावा और कोई ना बचता हो जरा, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया क्योंकि अल्लाह ताला ने नबी को इख्तियार दे दिया था। ठीक है, जैसे अम्मी जो है वो आपको इख्तियार दे दें तो अब तो फिर उसके बाद पटाई नहीं होती ना। ठीक है, एनीवे अच्छा, इसके बाद एक और बात है बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो है, ठंडक हो गई और कुछ चीजें आ रही है। अच्छा, एक और छोटा वाकया हम ये बताते हैं आपको कि एक और आदमी था नौफिल बिन हारिस। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनसे फिदिये देने को कहा ना, तो नौफिल ने जवाब दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं क्या फिदिया दूं, लेकिन झूठ बोल रहे थे वो। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अच्छा वो जो एक तुमने जो नेजे छुपाए हुए ना जद्दा के अंदर, तो वो कहाँ है फिर? मैंने कहा भाई मैंने तो छुपाए थे, आपको कैसे पता कि मैंने नेजे छुपाए थे? ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो 1,000 नेजे तुम जद्दा में छुपा के आए हो, नेजे स्पीयर्स, ठीक है ना, यानी ही वाज अ एम्यूनेशन डीलर काइंड ऑफ। ठीक है, तो उसके पास 1,000 नेजे थे, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थे, तो भाई बहुत बड़ी वैल्यू होती है उनकी। तो जब इसने ये सुना ना, नौफिल बिन हारिस ने जब इन्होंने ये सुना, तो इन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका अब्दुहु व रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए कि ये खबर किसी को नहीं पता, ये आपको अल्लाह ही ने बताई है और कोई नहीं बता सकता। ठीक है, क्योंकि इट वॉज अ टॉप सीक्रेट फॉर मी। ठीक है, तो उसी तरीके से एक और थे साहब अमर बिन वहब। ठीक है, अमर बिन वहब, इनका जो बेटा था ना उसका नाम भी वहब था और इनके अब्बा का नाम भी वहब था, तो वहब बिन अमर बिन वहब। ठीक है, तो इनका बेटा जो वहब था ना वो भी कैदियों में से था। ठीक है, और अमर जो था ये काफिर मक्का मुकरमा के मुशरिक था। ठीक है, तो इसको बड़ा गुस्सा था कि ये जो हम लोग हारे हैं ना बदर के अंदर, उसको बड़ा शदीद गुस्सा था। आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उस जमाने में जद्दा का नाम जद्दा ही था, किताब में बताया जद्दा ही था। तो अमर बिन वहाब ने ना ये बैठा हुआ था अपने एक दोस्त उसी उसी बंदे के साथ, सफान बिन उमैया का भी जिक्र आया था ना, जो कि हतीम में बैठा हुआ था और उसने कहा था ये बताओ कि जी सफान बिन उमैया, तो सफान बिन उमैया से वहाब बिन ये अमर बिन वहाब ने आकर के कहा कि ये जो हमारे साथ हुआ है ना बदर के अंदर, तो बहुत बुरा हुआ है और हमारे सारे के सारे सरदार मारे गए हैं, और इसके बाद जो है ना बस जिंदगी का मजा ही खत्म हो गया है, यानी बस सारी जो हमारी जॉय थी, जो एक मजे थे मक्का मुकरमा के अंदर, एक लाइवली हम लोग जिंदगी गुजारा करते थे, हल्ला गुल्ला वाली जिंदगी, राइट, सारी की सारी खत्म हो गई। ठीक है, तो कहता है सफवान बिन उमैया से कि अगर मेरे बीवी बच्चे और मेरे ऐसे घर वाले इतना होते ना जिनकी मुझे जिम्मेदारी है, मुझे उनके खाने पीने का इंतजाम, दे आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो लोग ना होते ना, या कोई उनकी जिम्मेदारी ले लेता, मुझे मुझसे कोई वादा कर देता कि मेरे मरने के बाद जो है ना वो मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखेगा, तो मैं जो हूं ना मदीना जा करके ना मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल ही कर देता, मैं नहीं छोड़ता हूँ। ठीक है, इस चीज के लिए पहले कोई तैयार नहीं हुआ था। जब इसने ये बात कही ना, तो सफवान बिन उमैया ने कहा डोंट इवन वरी अबाउट इट, आई विल टेक केयर ऑफ योर फैमिली, है ना, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम जाओ और अपना काम करके आओ। ठीक है, और जाहिर है जब वो काम करोगे तो फिर छोड़ेंगे तो नहीं तुम, यानी इसको भी पता था कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी है ना वो मुझे मार देंगे, इसी वजह से तो ये इसने प्रॉमिस दिया था। तो सफवान बिन उमैया ने प्रॉमिस कर दिया इसके इसके साथ। तो उमर इब्ने वहब या अमर इब्ने वहब, अमर इब नहीं उमर, क्योंकि ये अमर जो है ना वो वाव के साथ लिखा जाता है, एक मिनट है, आपने पूछा है तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ, उमैर बिन वहब, सॉरी उमैर बिन वहब, सही कह रहे हैं आप, उमैर। तो जब इसने वादा ले लिया तो फिर इसने अपनी तलवार निकाली और तलवार में ना इसने जहर बाकायदा जहर में डुबोया। ठीक है, इस तरह का पहले भी शायद हम बात कर चुके हैं कि तलवार को मारें तो फिर जख्म पड़ता है, फिर जख्म को जो है आप दवा शवा लगाएं तो ठीक भी हो जाता है जख्म। ठीक है, तो बंदे के मरने के चांसेस कम होते हैं अगर आप खाली उसको तलवार से मारें, लेकिन अगर तलवार के अंदर जहर लगा देना तो उससे क्या होता है कि आपको जब वूंड होगा ना तो वो जो जहर है पॉइजन जो है वो फिर आपके ब्लड सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएगा। ठीक है, और फिर उससे जो है ना फिर बंदा बचता नहीं है उसके बाद। जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि अगर कभी आपको आपको रगड़ लग जाए सड़क वगैरह के ऊपर, ठीक है ना, कभी कोई जख्म आ जाए तो फौरन कहते हैं जी इसके ऊपर एंटीसेप्टिक लगाओ, एंटीसेप्टिक लगाओ। ठीक है ना, क्योंकि सड़क से या किसी चीज से जिससे कि आपको आपको जख्म आया ना तो वहां से अगर कोई जर्म्स आपके सिस्टम के अंदर दाखिल हो गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने स्किन बनाई है ना ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बनाई है, जब स्किन जो है वो कट गई फट गई तो अब जो है ना वो प्रोटेक्टिव लेयर तो है नहीं, तो अब जर्म्स आपके अंदर दाखिल होकर के आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसी वजह से ये लोग क्या करते थे, जब इनको मेक श्योर करना होता था ना कि अगला बंदा बचे नहीं तो ये फिर तलवार या नेजे के अंदर बाकायदा जहर जो है ना वो लगा देते थे उसके साथ, ताकि पहली वार के अंदर जहर अंदर चला जाए, अब बंदा बिलाखिर मर ही जाए। तो इसने इसी तरीके से अपनी तलवार के अंदर जहर जो है ना वो लगाया और लेकर के ये मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। ठीक है, अच्छा ये भी बड़ा बड़े लोग भी दलेर होते थे ऐसे ऐसे कोई थोड़ी, तो ये जो है ना अपना घोड़ा लेकर के ठीक मस्जिद नबी के दरवाजे के ऊपर पहुंचा। वहां पर जो है ना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे कुछ सहाबा के साथ बैठे हुए बदर के वाकयात डिस्कस कर रहे थे आपस में लोग। ठीक है ना, सहाबा भी इस तरीके से बैठा करते थे और ये सारी ईमान वाली बातें जो है वो डिस्कस किया करते थे, वाकयात डिस्कस करते थे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हुए थे, उन्होंने देखा ये तो उमर बिन वहाब आया हुआ है और इसके साथ जो है ना वो इसके गले में तलवार भी लटकी हुई है। ठीक है, तो ये तो पहचान गए, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अल्लाह ताला ने क्या बसीरत दी थी, है ना, साइट बियॉन्ड साइट। ठीक है, वो देखते ही पहचान गए ये जो है ना ये तो बड़ा दुश्मन है नबी अलैहिस्सलाम सलाम का, ये यकीनन किसी गंदे नियत से आया है। ठीक है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उसके पास पहुंचे और उसको पकड़ लिया। ठीक है, और ऐसे पकड़ा कि इसकी तलवार जो थी ना वो भी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के गिरफ्त के अंदर आ गई और उसको लेकर के जो है ना फिर नबी अलैहिस्सलाम सलाम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे, इसको लेकर के आप सल्लम के पास आए और फरमाया कि ये जो है ना अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के रसूल का दुश्मन है, तो मैं इसको पकड़ के आपके पास ले आया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा ना तो आपने फरमाया कि उमर छोड़ दो इसको, ठीक है ना, लेट हिम गो, रिलीज कर दो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उमर क्यों आयो, तो उसने कहा कि मेरा बेटा कैदी है आपके पास, प्रिजनर है, तो मैं बेटे को छुड़वाने के लिए आया हूँ। ठीक है, नबी उमर उमर सच सच बताओ क्यों आयो, सच्ची मुच्ची में बताओ क्यों आए हो। तो फिर इसने कहा कि मैं अपने बेटे को छुड़ाने के लिए आऊं। अच्छा उमर, फिर ये तलवार क्यों लेकर के आए हो साथ, ठीक है ना, ये तो गोया कि जैसे तुम लड़ने के लिए आए हो। तो कहता है कि इस तलवार का क्या करना, तलवारों ने तो हमें कोई फायदा नहीं दिया, हम तलवारें लेकर के आए थे ना बदर में, आप लोगों ने हमें मार करके हरा दिया, तो तलवार का क्या करना, इस किस्म की इसने बात बना दी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा उमर ये बताओ कि तुमने सुफियान, क्या नाम था उसका, सफवा बिन उमैया, हाँ सफवान बिन उमैया से तुमने क्या कहा था। ठीक है, तो कहता है मैंने क्या कहा था, तुम बताओ क्या कहा था तुमने उससे। ठीक है, तो फिर इसने तो जवाब नहीं दिया, फरमाया कि तुमने हतीम में बैठ करके ना उससे ये कहा था कि अगर कोई मेरे बीवी बच्चों का जिम्मेदारी ले लेना तो मैं जाकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ूंगा, बदल करके आ जाऊंगा। ठीक है, और उसने जो है वो तुमसे जिम्मेदारी ले ली थी। इसने सुना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना का अब्दुहू व रसूल। ठीक है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है और आप अल्लाह ताला के रसूल हैं, इसलिए कि इस जो मेरी उससे कॉन्वर्सेशन हुई थी किसी को नहीं पता कि हम दोनों के दरमियान ही बात हुई। ठीक है, तो ये तो हो गया मुसलमान। ठीक है, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने सहाबा कराम को बुलाया कि भाई ये तुम्हारा भाई आया है, ये मुसलमान हो गया है, इसको दीन सिखाओ। तो सहाबा ने फिर इनको असहाबे सफा में ले गए होंगे, इनको नमाज पढ़नी सिखाई, दीन की जरूरी मसाइल सिखाए, तहारत सिखाई वगैरह वगैरह, तो इन्होंने दीन सीख लिया। फिर उसके बाद जो है ना इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम से कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ना आपके साथ बहुत बदतमीजी करी। ठीक है, और मैंने जो है ना मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी हैं और मैंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं ना अब उसको उसका कफारा अदा करूं, ठीक है ना। तो आप मुझे इजाजत दें कि मैं मक्का मुकरमा वापस जाऊं, वहां जाकर के जो है ना मैं लोगों को अब दीन की तरफ बुलाऊं, ठीक है। और जो लोग जो है ना मेरी बात नहीं मानेंगे ना, मैं उनको खूब सताऊंगा, उनको अच्छी तरीके से तंग करूंगा, ठीक है। तो आप मुझे इजाजत दें, तो नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इजाजत दे दी। तो ये जो उमैर बिन वहब थे ना रजी अल्लाह तआला अन, ये फिर अपने बेटे को लेकर के, उनका बेटा मुसलमान हुआ है नहीं ये किताब में नहीं लिखा, मुझे नहीं मालूम। तो बेटे को लेकर के मक्का मुकरमा गए थे, बेटे को सबसे पहले उन्होंने इस्लाम की तरफ बुलाया होगा। अच्छा, वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर सफवान बिन उमैया जो था ना, वो तो कह रहा था बस अब तो खबर आने वाली है, बिग न्यूज आने वाली है। तो सब लोगों को बताता फिर रहा था कि फिक्र ना करो, जितना गम है ना बदर का, एक ऐसी खबर आने वाली है कि तुम सारा गम भूल जाओगे, एंड यू विल रिजॉइस, मजा आ जाएगा तुम्हें, बस एक खबर आने वाली है, बस थोड़ा सा वेट कर लो। इसको यकीन था कि अब जो है ना वो ये मरने वाली खबर आ जाएगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज बिल्ला, ठीक है। इतने में क्या हुआ कि उमैर बिन वहाब साहब आए और आकर के ना, मैं तो मुसलमान हो गया, इसकी तो जो हशर हुआ है ना सफान का, इसने यानी अजीब क्या आप सोच रहे थे और क्या हो गया, जो मारने गया था वही जो है ना वो गुलाम बन करके आ गया, ठीक है। तो इसने कहा मैं तुमसे तो अब मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, ठीक है ना, मेरी तुम्हारी कट्टी कट्टी कर ली, देखो उससे क्या फायदा होता है भाई, ठीक है। तो उमैर बिन वहाब जो है ना, इन्होंने खूब दब करके वहां पे दीन की तबलीग करनी शुरू करी और खुल करके तबलीग करनी शुरू करी। तो इनका भी बड़ा बड़ा मजेदार वाकया था। फिर एक और जो है ना, एक अहम वाकया वो ये था कि जो कैदी थे उनमें से एक कैदी जो थे नबी अलैहिस्सलाम उनके अपने चचा थे अब्बास रजी अल्लाह तआला, जिनके की फैमिली का भी हमने सुना ना कि वो मुसलमान हो गए थे फैमिली वाले, लेकिन अब्बास रजी मुसलमान नहीं हुए थे। तो अब्बास रजी अल्लाह तआला जो थे ना, ये थे बड़े तगड़े किस्म के ना, लंबे चौड़े जबरदस्त किस्म के। इनको गिरफ्तार किसने किया, इनको एक सहाबी अंसारी ने गिरफ्तार किया, इनको फरिश्ते ने गिरफ्तार किया। तो इनको गिरफ्तार वैसे तो एक पतले दुबले से सहाबी ने गिरफ्तार किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई तुमने कैसे गिरफ्तार कर लिया, तो इतने लंबे चौड़े मजबूत है, तुम तो इतने पतले दुबले से कमजोर हो, तुमने कैसे गिरफ्तार किया। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह ने भी वो कोई अजीब गरीब किस्म की कोई चीज थी, उसने पकड़ के मेरे हवाले कर दिया, मैंने तो बस पकड़ लिया इनको, ठीक है ना, मैंने तो बस उनको बांध दिया, ठीक है, हवाले तो मुझे किसी ने किया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, वो फरिश्ते थे जिन्होंने तुम्हारी मदद करी थी इनको गिरफ्तार करने में, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ना अपने चचा अब्बास हज़रत अरन का जो है वो सबसे ज्यादा फिदिया मुकर्रर किया, ठीक है, सबसे एक्सपेंसिव फिदिया जो है ना वो अपने चचा अब्बास हज़रत अरन का किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा भी कि आपने जो है वो मेरी रिश्तेदारी को ऐसे ज्यादा फिदिया किया है। तो नबी अलैहि सलाम ने फिर जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया और एक आयत बकायदा नाजिल फरमाई इसके ऊपर, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म में था कि अब्बास सुल्तान जो है ना ये मुसलमान होने वाले हैं। और आखिरी कैदी जिनका वाक्य आपको सुनाना था वो है नबी अलैहिस्सलाम के पहले दामाद। पहली बेटी कौन थी, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, ठीक है। तो इनकी शादी जो है ना नबी अलैहिस्सलाम ने करी थी इनकी अम्मी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन के बेटे से, यानी हजरत खदीजा ताला अन्हा के भांजे थे अबुल आस, उनसे नबी अलैहिस्सलाम ने इनकी शादी करी थी, क्योंकि खदीजा ताला अन्हा जो है वो उनको बहुत पसंद करती थी, उनके सगे भांजे थे, उनको अपने बेटों की तरह से वो समझती थी। तो उनकी शादी हो गई, और ये किस वक्त की बात है, ये नबी अलैहिस्सलाम के बेसत से पहले की, 40 इयर्स की एज से पहले की बात है, ठीक है। उसी वक्त जो है वो शादी तो इनकी हो गई थी, इनकी तो शादी हो गई थी, और जो बाकी दो थी ना, कौन थी, रुकैया और उम्मे कुलसूम, इनकी बाकायदा शादी नहीं हुई थी, लेकिन इनकी बात पक्की हो गई थी किसके साथ, अबू लहाब के दो बेटों के साथ, ठीक है ना, लेकिन इनकी तो बाकायदा शादी हो चुकी थी। तो अबू लहाब के बेटों ने तो फिर वो बात पक्की जो थी ना उसको तोड़ दिया, क्योंकि अबू लहाब ने कहा कि भाई ये तो नाउज़ुबिल्लाह हमारे दुश्मन है, तो इनकी बेटियां हमारे घर में नहीं आ सकती, उन्होंने तो खत्म कर दिया ना। कुरैश ने इनके ऊपर भी बड़ा दबाव डाला कि जिस तरह अबू लहाब के बेटों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को छोड़ दिया है, तुम भी अपनी बीवी ज़ैनब को जो है वो तलाक दे दो, हमारी शादी तो हो चुकी है लेकिन खत्म करो इस शादी को। इन्होंने कहा नहीं, मैं जैनब को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जैनब जैसी शरीफ और अच्छी औरत जो है ना, ये मुझे कहीं नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जैनब को छोड़ता। ठीक है, तो जाहिर है कि एक नेकी और अच्छी यानी अच्छे अखलाक वाली बात थी ना। तो ये लेकिन मुसलमान नहीं हुए, सारी बेटियां मुसलमान हो गई, बीवियां तो थी मुसलमान, सर ये मुसलमान नहीं हुए। तो अब जो है ना, जब बदर का मौका आया तो अबुल आस भी जो है ना, वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से बदर में आए। ठीक है, और वहां पर ये भी कैद हो गए, कैदियों में ये भी आ गए। अब जब कैदियों के वही फिदिये विदिये का मामला हुआ, तो नबी अलैहि सलाम ने अपने दामाद अबुल आस का भी मैसेज भेजवाया कि भाई इनका भी फिदिया भेजो। तो इनका फिदिया जो है ना, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्होंने अभी तक हिजरत नहीं करी थी। ठीक है, अच्छा, उस जमाने में काफिर औरत जो है वो, सॉरी, काफिर मर्द जो है उसकी शादी किसी मुसलमान औरत से बरकरार थी, जो पहले शादी हो चुकी, तो उसको अभी तोड़ा नहीं, खत्म नहीं किया गया था। तो ये लोग, जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा मुसलमान हो चुकी थी, अबुल आस जो है वो मुशरिक थे, लेकिन मियाँ बीवी के तौर पर ये लोग रह रहे थे वहां पर। ठीक है, तो जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को जब ये मैसेज पहुंचा फिदिये वाला, तो उन्होंने फिदिये में ना उनका एक हार था जो उनको हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी वालिदा ने शादी के वक्त बतौर जहेज के देते ना कि मैं, मेरी बेटी ये मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ तुम्हें तोहफा, वो हार इनको तोहफे में दिया था। तो उन्होंने क्या किया कि वही हार जो था ना, जो बड़ा कीमती हार होगा, यकीनन खदीजा तरान जो थी वो बड़ी अमीर औरत थी ना, तो वैसे तो उन्होंने सारी दौलत नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी थी कि आप बस अपने दीन के तरवीज के अंदर इसको खर्च करें, लेकिन एक दो हार वार इसमें कोई चीज जो है बच गई होगी, तो वो हार इनके पास था। तो इन्होंने वो हार बतौर फिदिया के मदीना मुनव्वरा भेज दिया। ठीक है, जब वो हार मदीना मुनव्वरा पहुंचा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, उसको देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा याद आई। ठीक है, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू। ठीक है, ये और भी मौकों पर ऐसा हुआ था, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा याद आती थी ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जस्ट लूज हिमसेल्फ, ही वुड नॉट बी एबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू हो गए आंसू। ठीक है, सहाबा कराम ने देखा, अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं। ठीक है, सहाबा कराम तो नहीं समझ में आया, फिर भी मैं रोना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ऐसा इनका मामला था। तो नबी अलैहि सलाम को रोता देख करके ना, तो उन्होंने कह लगा कि आप जो भी फरमाएंगे हम वही करेंगे। तब आपसे फरमाया कि भाई तुम लोग ना, अगर इसको अबुल आस को बगैर फिदिये के, बगैर इस हार के लिए हुए, अगर आज़ाद कर दो तो अच्छी बात होगी। ठीक है, तो सहाबा कराम बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम इनका हार लिए बगैर उनको, बगैर इनको हार के साथ ही वापस कर दें। ठीक है, तो ये बगैर फिदिये के आज़ाद कर दिए गए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इनसे बतौर फिदिये के एक वादा ले लिया। ठीक है, वो ये क्या कि तुम मक्का मुकरमा वापस जा करके मेरी बेटी जैनब को जो है ना फिर मदीना मुनव्वरा भेज दोगे। इन्होंने वादा कर लिया और ये वादे के पक्के थे। तो वापस ये गए और वापस जा करके इन्होंने जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के वापस भेजने का इंतजाम किया। अपने भाई को हुक्म दिया कि तुम जो है ना जैनब को लेकर के मदीना मुनव्वरा रवाना हो जाओ। तो उनके भाई ने ना ठीक दोपहर के वक्त जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को ऊँट पे बिठाया और लेकर के जो है वो थोड़ा सा बाहर निकले थे कि कुरैश को पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है ना वो दिन दहाड़े ऐसे आज़ादी के साथ निकल कर जा रही है। तो कुरैश वाले लोग आ गए, काफिर लोग आ गए, अबू सुफियान भी था और एक और आदमी था हिबार बिन अस्वद भी, जो बाद में मुसलमान हो गया था। तो पहले तो हिबार बिन अस्वद आए, उसने जो है ना जैनब को खूब डराना धमकाना शुरू किया, ये बहुत खौफजदा हो गई। ठीक है, इनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई। तो ये लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी जिल्लत की बात है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ना ऐसे दिन में यहाँ से निकल करके चली गई, ये हमारी जिल्लत है, वरना हमें कोई इनको रोकने की जरूरत नहीं है, वी डोंट केयर, जाए तो जाए, लेकिन दिन में ऐसे हमारे सामने चली जाएं, ये तो भाई बड़ी बेइज्जती वाली बात है। तो ऐसा करो कि इनको जो है ना तुम वापस ले जाओ और फिर रात के वक्त लेके निकल जाना है बस। अजीब की बात थी, बस उनको जाहिरी गैरत, जाहिरी इज्जत है ना, इसकी बड़ी फिक्र थी, तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हमारी, तो रात को लेके निकल जाना, हम कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बात मान ली, वो लेकर के घर आ गए और फिर दो तीन दिन के बाद रात के वक्त जो है वो जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को लेकर के निकले, एक मुकाम तक पहुंचे, वहां पे नबी अलैहिस्सलाम ने दो सहाबा को पहले से मदीना मुनव्वरा से भेजा हुआ था। ठीक है, तो वो वहां पे मौजूद थे, वेट कर रहे थे, ये उसी मकाम के ऊपर पहुंचे और उनके हवाले किया। और फिर वो दो सहाबी जो थे वो हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को ऊँट के ऊपर, ऊँट पे बैठी हुई थी, उसके ऊपर लेकर के मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला को रिसीव किया और ये आपस के पास रहना शुरू हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद ना ये जो अबुल आस थे ये मुसलमान नहीं हुए थे, ये काफिर ही हालत में मक्का मुकरमा में रह रहे थे। तो इन्होंने जो है ना एक एक सफर करना था अपने ट्रेड के लिए, अपने सफर, अपने जो वो लोग लेक सामान लेके जाते थे ना वहां पे बेचते थे शाम, फिर शाम से जो है वो चीजें लेके आते थे। तो ये जो है ना कुरैश के लोगों का सामान लेकर के शाम जा रहे थे। कुरैश वालों ने अपना अच्छा खासा इनको सामान दिया हुआ था, क्योंकि ट्रस्ट करते थे लोग इनको, बड़े इज्जतदार और बड़े शरीफ और सच्चे इंसान थे अबुल आस। तो ये जब सामान लेकर के गए वहां पे जाकर के इन्होंने बेचा, फिर वहां से चीजें लेकर के वापस आ रहे थे ना, तो या जा रहे थे उस वक्त या वापस आ रहे थे, जो जो भी वक्त था, मुसलमानों का एक जो है ना वो वहां पर एक छोटी सी एक फोर्स मौजूद थी, उन्होंने इनको पकड़ लिया, बल्कि इनके सामान को पकड़ लिया। और सामान को लेकर के ना ये मुसलमान आर्मी वाले जो है ना ये मदीना मुनव्वरा आ गए। ठीक है, और ये खुद जो है ना ये छुपते छुपाते मदीना मुनव्वरा पहुंच गए और अपनी बीवी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए मुलाकात के लिए। ठीक है, वही मेरी बीवी यहाँ पे रह रही है। तो नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपनी बेटी ज़ैनब से कहा कि भाई ज़ैनब जो है ना तुम अब जो है ना बस अब हुक्म आ गया है, अब तुम इनकी बीवी नहीं हो। ठीक है, लेकिन ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना उन्होंने इनको कम अज़ कम पनाह दे दी। फजर के वक्त ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने उस जमाने में क्या होता था कि मदीना मुनव्वरा में आपने देखा है बाबुन निसा, जहां से आजकल रिजाल जाते हैं, पहले वो निसा था, ठीक है, अब रिजाल उधर से जाते हैं, खैर पीछे ना है ना औरतों का दरवाजा है। ठीक है, तो औरतें जो है वहां से अंदर आती थी और पीछे जो है ना औरतों की सफ़ें बनती थी, मर्दों की सफ़ें आगे बनती थी। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में सारी औरतें जो है ना वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबी में आया करती थी, तो उनमें हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा भी मौजूद थी। तो वो आई और उन्होंने ना पीछे से आवाज दी कि मैंने अबुल आस बिन अमर को, अबुल आस बिन रबी को पनाह दे दी। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को ये बात पता ही नहीं थी कि ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा डू दिस। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज खत्म होने के बाद सबको बताया कि भाई ये चीज मैंने भी अभी सुनी है, जब दोनों ने सुनी कि इन्होंने जो है ना अबुल आस को पनाह दे दी है। ठीक है, तो इस वजह से हम अगरचे के मुशरिक हैं लेकिन किसी मुसलमान ने किसी दूसरे इंसान को पनाह दे दी तो वी कंसिडर दैट। सही है, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि भाई ये जो अबुल आस है ना, तुम्हें पता है कि इसका हमारे साथ क्या रिश्ता है। ठीक है, खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ये भांजे हैं, मेरी बेटी के जो है ये शौहर हुआ करते थे और उन्होंने मेरी बेटी के ऊपर एहसान भी किया है। ठीक है, कि एक तो ये उन्होंने अबू लहाब की तरह जो है वो मेरी बेटी को ऐसे नहीं जलील करके निकालने की कोशिश करी। ठीक है, दूसरा ये कि उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने उनको भेज दिया। ठीक है ना, तो इतना अच्छा तो इंसान ये है। तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर तुम चाहो तो तुमने जो इनसे सामान वगैरह अभी लूटा है ना तो ये उनको वापस कर दो, और अगर तुम ना चाहो तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, ये सब ठीक है। तो सहाबा कराम तो भाई नबी अलैहिस्सलाम की चाहत के ऊपर अपनी जान भी दे देते थे। नबी सहाबा ने कहा कोई बात नहीं, ना हम सारी चीजें इनको वापस करते। ठीक है, तो सहाबा ने जो वो सामान इनका लूटा था ना, सामान तजारत, वो सारा का सारा इनको वापस कर दिया। इन्होंने सारी चीजें इकट्ठी करी और ले करके ये फिर मक्का मुकरमा पहुंचे। मक्का मुकरमा पहुंच करके इन्होंने जिन जिन का जो जो सामान था, वट एवर वॉज ड्यू टू एनी पर्सन इन मक्का मुकरमा, ये सारी चीजें सब लोगों को लौटाई। और जब लौटा चुके उसके बाद इन्होंने ऐलान किया, लोगों सुन लो कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। ठीक, इन्होंने कलमा पढ़ा, ऐलान किया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और इसके बाद जो है ये नबी अलैहिस्सलाम के पास और हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मक्का मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो है ना बहुत सारे लोग फिर कैदियों में से मुसलमान हो भी गए, कुछ ऐसे भी थे जो कि अभी भी मुसलमान नहीं हुए और फिर बाद में उनके साथ उहद में लड़ाई करने के लिए आ गए वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर बदर का वाकया इंशाल्लाह खत्म। इसके चंद दिनों के बाद रमजान मुबारक का महीना खत्म हो गया। बदर कब, किस तारीख को हुआ था? 17 रमजान मुबारक है, सबको पता है 17 रमजान मुबारक को बदर का की लड़ाई हुई थी। 3 दिन नबी अलैहिस्सलाम जो है वो रुके थे वहां पर, फिर वापस मदीना मुनव्वरा आए थे, ये सारे वाकयात हुए। फिर उसके बाद जो है ना रमजान मुबारक का महीना खत्म हुआ, पहली शव्वाल आई, और ये वो पहली शव्वाल थी जिसमें मुसलमानों ने सबसे पहले ईद उल फितर मनाई। ठीक है, ये पहली ईद, ईद उल फितर। तो जाहिर है ये खुशी का मौका था, फिर बदर की खुशी जो है वो उसको दोबारा करने के लिए मौजूद थी। तो इस तरह से ईद उल फितर मनाई। इसी साल 2 हिजरी के अंदर ही फिर ज़कात वगैरह की भी जो है ना वो निसाब आ गया कि भाई मुसलमान जो है वो इतना ज़कात अदा करेंगे, 2.5%, 40 यानी जो भी उसका निसाब था वो सब जो है वो 2nd हिजरी के अंदर आ गया। अच्छा, आखिरी बात बस ये, टाइम तो वैसे हो चुका है ख़त्म, आखिरी बात ये कि जब मुसलमानों को इस तरह की एक कामयाबी नसीब हो गई ना, तो इसके बाद मुसलमानों को एक मुश्किल ये पेश आ गई कि जो लोग दुश्मन थे वो दुश्मन जो है ना वो और ज्यादा अपनी दुश्मनी के अंदर जो है ना वो गैज़ो गज़ब का शिकार हो गए, यानी उन्होंने बहुत फ्रस्ट्रेटेड और बहुत यानी बस अब जो है ना उन्होंने साजिशें करनी शुरू कर दी मुसलमानों के खिलाफ। तो एक चीज तो ये हुई कि जब मुसलमान यहाँ पर आए, मुसलमान बड़े खुश थे, उनको कामयाबी मिल गई थी, तो कुछ जो लोग थे ना जो मदीना मुनव्वरा के अरब थे, औस और खजरज कबाइल वगैरह के, जो मुसलमान नहीं हुए थे, एंड दे डिड नॉट वांट टू बिकम मुस्लिम, वो मुसलमान होना नहीं चाहते थे, वो जो है आउटवर्डली मुसलमान हो गए। ठीक है, यानी उन्होंने कहा कि हम मुसलमान होते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हम आपके साहबी बनते हैं, लेकिन असल में वो मुनाफिक, वो मुसलमान नहीं हुए थे। तो वो कौन लोग, ये एक नई कैटेगरी बन गई दुश्मनों की, ये कैटेगरी पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, मुनाफिक। ठीक है, हिपोक्रेट्स, सही, उस जमाने में शिया नहीं होते थे, वो बाद में बने, तो ये हिपोक्रेट्स मुनाफिक। ठीक है ना, अब्दुल्ला बिन उबई ये इनका सरदार था, ये यहूदी नहीं था, ये अरब था। ठीक है, ये उन मुनाफिकों का सरदार था, उसके साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग मुसलमान, छूटे मुसलमान हो गए। ठीक है, और ये असल में तो मुसलमानों के दुश्मन थे, लेकिन धोखा, मुसलमानों को लगता था ये तो मुसलमान हो गए, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम सलाम को पता होता था कि असल में ये काफिर ही है, बाकियों को नहीं पता होता। ठीक है, तो एक एनिमीज की एक नई कैटेगरी बन गई, जो पुरानी कैटेगरीज थी एनिमी की, यानी यहूदी, यहूदी जो है वो और ज्यादा परेशान हो गए कि भाई ये तो कामयाब भी हो गए, अब तो बस हमारी सारी चीजें खत्म होने वाली हैं अगर इनको और कामयाबी मिल गई। तो वो उन्होंने और साजिशें करनी शुरू कर दी मुसलमानों के खिलाफ। उसी तरीके से जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने भी साजिशें करनी शुरू करी, दूसरे लोगों से बातें करनी शुरू करी कि अब हम दोबारा अटैक करेंगे मदीना मुनव्वरा के ऊपर, और उन लोगों को वंस एंड फॉर ऑल जो है ना खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुसलमानों के लिए चैलेंजेस जो है ना वो मजीद बढ़ गए। एक बहुत बड़ी कामयाबी तो मिल गई, एक हैबत तो बैठ गई, लेकिन एनिमीज भी नहीं बन गए। ठीक है जी, क्या पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आप, क्या पूछना चाह रहे हैं? कि वो असल में काफिर हैं। नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने कुछ करीबी लोगों को तो बता दिया था, लेकिन जनरली सबको नहीं बताया था। ठीक है, उसकी कुछ हिकमतें थी, मसलहतें थी, वो फिर हम कभी और इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। ज़ैनब रज़ियल्लाहुन्हा के शोहर कौन थे? अबुल आस बिन रबी, उनका नाम अबुल आस बिन रबी। ठीक है, और कोई सवाल किसी के पास ऑनलाइन या ऑन साइट? एनीथिंग जी आप? अच्छा, असल में ना ये जो जख्म वाली बात थी, हजरत इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये लिखा ही नहीं है कि वो गिर गई थी ऊंट से और उनको जख्म लगा था और जख्म उनकी मौत का सबब बना था। इसमें तो बस इतना लिखा है कि उस बंदे ने, जो वहाब नाम था ना उसका, तो उसने आकर के उनको इतना खौफ दिलाया था कि खौफ की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। तो गिरने वगैरह को कोई इन्होंने तो मुसलमान जिक्र नहीं किया। हबार बिन अस्वद जो बाद में चल के मुसलमान हो गए थे, उन्होंने जाकर ऊँट रोका और जैनब ज़ैदान को डराया, और इस डरने से जो है ना उनका मिसकैरेज हो गया। हो सकता है दूसरी रिवायत में वो गिरने वाली बात भी हो, फिर वो उस जख्म की वजह से उनकी बात में वफात भी हुई थी। जी कैसे डराया, कैसे डराया? बस ऐसे ही मैं मार देंगे, नहीं छोड़ेंगे, कहाँ जा रही हो, ये वो इस किस्म की बातें बस। औरत तो वैसे ही बेचारी अल्लाह ताला ने कमजोर बनाई है, तो बहुत ज्यादा डर गई इससे।
तो हाथ
हाँ, हाथ उठाया नहीं था, वर्बली डराया था, वरना अगर चाहता तो उधर आकर के मार भी सकता था और कुछ कर सकता, लेकिन वो उसने नहीं किया। चले, वाखिरु दावाना अन अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।